मता पहुंचने के बाद आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा या किसी से पूछेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि सामने जो ग्रीन लाइट लगी हुई है ठीक उसके सामने हजरे अस्वद है। आपको हजरे अस्वद के पास जाना है। जब आप हजरे अस्वद के पास जाएंगे तो उसके पास जाने के पहले पहले आप चूंकि हालत एहराम में हैं, आप एहराम की हालत में और आपको अभी उम्रे का तवाफ करना है, उम्रे का तवाफ करना है, उम्रे के तवाफ से पहले पहले आपको अपने एहराम की कंडीशन बदलना है, जिसको आप इस्तेबा कहते हैं। इस्तेबा, इस्तेबा का मतलब यह है कि जो चादर आपने ओढ़ी हुई है अपने कंधे पर उसको सीधे कंधे से नीचे लाना है, बगल के नीचे लाना है और बगल के नीचे लाकर बाएं कंधे पर आपको डाल देना है। लेफ्ट साइड राइट साइड का छोड़ा होगा उसको ऊपर के बजाय आप नीचे से लाएंगे और नाक इस पे डाल देंगे, ये सीधा कंधा आपका खुला रहेगा, सीधा कंधा खुला रहेगा। इसी सीधे कंधे को खोल देना तवाफ के दरमियान की सेवा कहलाता है, इसको यहाँ सेवा कहते हैं। तो हजरे अस्वद के पास पहुंचने से पहले पहले आप अपनी चादर को नीचे से लाकर कंधे पर डाल दें ताकि सेवा की कंडीशन बन जाए। फिर उसके बाद हजरे अस्वद के बिल्कुल सामने, जहां से बिल्कुल हजरे अस्वद बिल्कुल सामने, उससे दो कदम पहले, उससे दो कदम पहले आप खड़े हो जाएं और अपना हाथ नमाज की तरह उठाएं। याद रखिएगा, पहली दफा जो आपको अपना हाथ उठाना है हजरे अस्वद से दो कदम पहले खाने काबा की तरफ अपना हाथ उठाना है और उठाकर कहना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल्हम्द। ये जो कहना, ये हाथ उठाया आपने, ये हाथ उठाया है काबे का, आपने इस्तकबाल किया है काबे का, इस्तकबाल, मेहमान जिस तरह आता है आप उसका इस्तकबाल करते हैं, ये खाने काबा का इस्तकबाल है। ये फर्स्ट टाइम अपने हाथ को कंधे तक नहीं, सीने तक नहीं, बल्कि कान तक जिस तरह नमाज में उठाते हैं इस तरह उठाना है। उठाते हुए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल्हम्द पढ़कर अपने हाथ को नीचे छोड़ना है। फिर दो कदम आप आगे बढ़ेंगे तो आप हजरे अस्वद के ठीक सामने आ गए, आपका चेहरा, आपका सीना, आपका कदम हजरे अस्वद की तरफ होगा। हजरे अस्वद के सामने आकर जो हाथ उठाया जाता है इसको अरबी में इस्तिलाम कहते हैं, किताबों में इसका नाम इस्तिलाम लिखा होगा। पहली सूरत तो यह है कि आदमी हजरे अस्वद के हाथ रखे, आपको इसका मौका न मिलेगा, इसकी कोशिश आपको करनी है, दूर दूर से ही आपको अपने हाथ को उठाना है। ये हाथ को उठाना जो हजरे अस्वद को बोसा देने के लिए, इसकी नाम के लिए, ये हाथ का उठाना सीने के बराबर, जो आपका सीना, जहां का बटन होता है पिछला बटन, ये पिछले बटन सीने के दरमियान आपका हाथ इस तरह से उठाना, ये हाथ सीने के हजरे अस्वद की तरफ होना चाहिए। अपने हाथ को आप हजरे अस्वद की तरफ रखें, ये ख्याल करें कि जिस तरह किसी बंदे को उस पर हाथ रखने का मौका मिल गया, उसको जो फजीलत हासिल हो गई, उसी तरह से हमने यह हाथ उठाकर उस पर रखा, ये भी हमको हाथ रखने की तरह है और उसको बरकत समझते हुए उसे चूम लेना है। यहां भी हाथ उठाते हुए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल्हम्द आप उठना पड़ना है। ये पढ़ लिया आपने, अब उसके बाद आपको गोल राउंड से तवाफ करना है, आपको बाएं तरफ से चलना शुरू करना है। ये बाएं तरफ से आप चलना शुरू करेंगे, बाएं तरफ से आप चलना शुरू करेंगे, ये चलने का अंदाज कैसा होना चाहिए इसको खास तौर पे समझिएगा और अपने ध्यान इसको दोहराइएगा, क्योंकि वहां हम पहली दफा एहतजाज करते हैं और हुजूम होता है, बहुत रश होता है, तो बहुत सी चीजें इंसान भूल जाता है या ध्यान से निकल जाता है। पहली सूरत तवाफ शुरू करने से पहले हमने इस्तेबा कर लिया, ये इस्तेबा सातों शॉट, सातों राउंड में ये इस्तेबा की शक्ल रखनी। दूसरी बात, पहले और दूसरे और तीसरे राउंड में हमें रमल करना, रमल का मतलब ये है बहादुराना अंदाज में अपने कंधे को हिलाकर और तेजी के साथ हमें चलना, जो बाद में बताया जाएगा, क्या बहादुराना अंदाज में अपने दोनों कंधे को हिलाकर तेजी के साथ चलना है, इसका नाम रमल है। ये मर्दों के मुताबिक है, औरतों को ऐसा नहीं करना है, मगर ये रमल उस वक्त सुन्नत है जबकि हमारे बदन के हिलाने, कंधे के हिलाने, हाथों के हरकत करने और झड़प कर चलने, इसकी वजह से किसी हाजी मर्द या औरत को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। अगर रश है, अगर रश है और भीड़ में हम आ गए तो ऐसी सूरत में या तो खड़े हो जाए, रश खत्म हो जाए तो बढ़े, और आम मतलब खड़े होने का भी मौका मिलता नहीं है। जहां अपनी रफ्तार से चलते रहे, जब जब तीन राउंड में हमें मौका मिले, जब जब तीन राउंड में मौका मिले उसमें हम रमल करें। ये रमल करना सिर्फ और सिर्फ पहले दूसरे तीसरे में सुन्नत है, चौथे में पांचवें छठे सातवें में सुन्नत हरगिज नहीं है। अगर पहले दूसरे तीसरे में छूट गया तो चौथे पांचवें में उसकी सजा हरगिज नहीं। अगर हमने चौथे पांचवें में उसकी सजा की तो ये खिलाफ सुन्नत हो जाए। पहले तीन में सुन्नत है, उसके बाद करना खिलाफ सुन्नत है। तो खास तौर पर दो बातें, पहली बात इसके बाद की हद हमें पहले कर लेना, नंबर दो रमल का करना, और नंबर तीन तवाफ के दरमियान हजरत अकबर के सामने तो हमें काबा को देखना है, लेकिन जब तवाफ शुरू करेंगे तो यहां से लेकर अखीर तक हमारा चेहरा सामने की तरफ होना चाहिए, निगाहें झुकी होनी चाहिए। तवाफ के दरमियान हमें खाने काबा को नहीं देखना, खाने काबा को देखना अदब के खिलाफ है, खाने काबा को देखना तवाफ के दरमियान अदब के खिलाफ है। ये पूरा हमारा एक राउंड होगा जबकि हम हजरत अकबर के सामने पहुंचेंगे। चौथी बात, इस एक राउंड में हमें क्या पढ़ना है, इस एक राउंड में हमें क्या पढ़ना है। याद रखें बहुत से लोग दुआ की किताबें हाथ में लेकर पढ़ते हैं, ये आम मतलब दुआ मांगते नहीं, दुआओं को पढ़ते नहीं। आप दो तीन ही दुआ याद करें, उसके माना उसके मफहूम को ध्यान में बैठा लें, और जिस दुआ को आप दिल की हुजूरी के साथ पूरी तवज्जो के साथ खुशू के साथ पढ़ सकते हैं ऐसी दुआओं को पढ़ें। किताब लेकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही दुआ पढ़ें जो आपको याद है और जिसको आप दिल की हुजूरी के साथ पढ़ते हैं। हजरत आदम अलैहि सलाम जब तवाफ करके फारिग हो गए, फरिश्ते की मुलाकात हुई तो फरिश्तों ने कहा कि आप क्या करके आए, तो हजरत आदम ने फरमाया मैं तवाफ करके आया, तो फरिश्तों ने कहा अच्छा आपने पहली दफा तवाफ किया है, आपकी पैदाइश से 2000 साल पहले से हम तवाफ करके आ रहे हैं, आपकी पैदाइश से 2000 साल पहले से हम तवाफ करके आए हैं। तो हजरत आदम ने पूछा क्या पढ़ते हो तुम लोग तवाफ में, तवाफ में क्या पढ़ते हो, तो फरिश्ते ने कहा हम लोग पढ़ते हैं तवाफ के दरमियान सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हमारी तस्बीह ये है, हम ये पढ़ते हैं, लिहाजा ये भी पढ़ना चाहिए। उसी तरह से तो आपको जो दुआ याद हो वही दुआ आप पढ़ें, और इतना लंबा सफर है, हर तरह की आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि चप्पल जो 40 रुपए की आती है 100 रुपए की आती है उसकी हिफाजत के लिए आप मार्केट जाके थैला खरीद के लाते हैं, ये सारी तैयारी करते हैं, तो कम से कम हर दिन बैठ के छोटी छोटी दुआ को याद कर सकते हैं, ज्यादा दुआओं को याद करने का इस्तेमाल करें। तो राउंड में आपको दुआ करें जो दुआ आपको याद हो, अलबत्ता हजरे अकबर से पहले, हजरे अकबर से पहले जो रुकन यमानी है उस रुकन यमानी से लेकर हजरत अकबर के दरमियान एक खास किस्म की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक अल-अफ्व वल-आफिया फि दीनी वद-दुनिया वल-आखिरा, रब्बना आतिना फिद-दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार, रब्बि अदखिलनी फिल-जन्नति मअल अब्रार। ये दुआ है, इस दुआ को आप याद कर लें, इसको आप पढ़ा करें। उसी तरह से दरमियान रब्बना आतिना फिद-दुनिया हसना, ये तो अरबी की दुआ है। इसी तरह से आपकी जो अपनी कुछ जरूरतें जिसको आप ज्यादा समझते हैं उसको भी राउंड में अपनी जबान में दुआ कर सकते हैं। अगर आप तवाफ के तवाफ को आप इस तरह से 7 दफा आपको तवाफ करना है, हर एक राउंड पूरा होने के बाद हजरत अकबर के सामने आकर सीना चेहरा और पांव ये तमाम का तमाम हजरत अकबर के सामने ले आए, और हाथ अपने सीने के सामने पिछले बटन के सामने लाए, और इस तरह से आप सलाम करें। औरतें सिलावा कपड़ा पहनती हैं, उनके लिए इस्तेवा का कोई मसला ही नहीं, नंबर दो उनके लिए रमल का कोई मसला ही नहीं, लेकिन उनको भी इस्तेलाम करना, मगर औरतों को इस्तेलाम इस तरह से करना है कि उनके बदन से किसी गैर महरम का बदन ना लगे, इसलिए वो ऐसी जगह से चलें जहां रश कम हो, जहां भीड़ कम हो, हत्तल इंसान ये कोशिश हो कि भीड़ में वो ना हो बल्कि अलग अलग होकर वो इस तरह से इस्तेलाम करें। पहला राउंड फिर दूसरा राउंड, जब 7वें राउंड पे आप पहुंचेंगे तो 7 राउंड आपका हो गया, 7 चक्कर हो गए, 7वें चक्कर के पूरा होने के बाद अब आपका तवाफ खत्म हो गया। ये तवाफ तो खत्म हो गया, मगर खत्म करने से पहले पहले हजरत अकबर के सामने फिर से आपको एक दफा इस्तेलाम करना है, गोया 7 चक्कर बनेगा मगर इस्तेलाम आपका 8 दफा होगा। यहां से فارغ ہونے کے بعد آپ کے اوپر دو رکعت نماز واجب ہو گئی. یاد رکھیں جب جب آپ طواف کریں گے, چاہے عمرے کا طواف, چاہے حج کا طواف, چاہے نفلی طواف, کوئی بھی طواف آپ کریں گے, اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا آپ پر واجب ہے. یہ دو رکعت نماز کا پڑھنا واجب ہے. البتہ آپ کو کہاں ادا کریں, بہتر سنت یہ ہے کہ مقام ابراہیم سے سامنے ایسی جگہ کہ کسی کو تکلیف نہ ہو, کسی کو تکلیف نہ ہو. ٹھیک مقام ابراہیم کے قریب پڑھنا ضروری نہیں ہے, اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے. اس کے ٹھیک پیچھے آپ اتنی دور چلے جائیں کہ سامنا بھی رہے اور سکون کے ساتھ آپ دو رکعت نماز بھی پڑھ سکیں. عورتوں کو اور بھی دوسری جگہ پر لے جائیں جہاں کسی مرد کے ساتھ اختلاط نہ ہو. دو رکعت نماز پڑھنا آپ کے لیے واجب ہے. یہ دو رکعت نماز اگر آپ چاہیں تو حرم میں بھی پڑھ سکتے ہیں, اپنے کمرے میں بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اسی وقت پڑھنا ضروری نہیں ہے, بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد اب آپ چلے کہاں, زمزم کے پاس. اب تو وہ کنواں آپ کو نظر نہیں آئے گا, مگر اسی کے سامنے سامنے نل لگے ہوئے ہیں. وہ جو نل لگے ہیں آپ کو اب بالکل تر و تازہ زمزم ملے گا. ہمارے یہاں زمزم آتا کئی دنوں کے بعد پہنچتا ہے, وہ تر و تازہ زمزم ملے گا. اسی کے اور کسی اللہ کے بندے نے کہا کہ زمزم پیتے ہوئے اس بات کا خیال رہے کہ مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا, مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا. جا میں زمزم اس کا پلایا, میں تو اس لائق نہ تھا. جا میں زمزم کا پلایا, میں تو اس لائق نہ تھا. اسی تصور کے ساتھ آپ اپنے ہاتھوں میں گلاس لیں اور گلاس لے کر آپ ذرا تھوڑا باہر نکلیں, نل کے پاس سے تھوڑا آگے بڑھیں اور ٹھیک حجرِ اسود کے خانہ کعبہ کے سامنے آئے. آپ کی نگاہیں خانہ کعبہ پہ لگی ہوئی ہوں, آپ کا دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہو اور ہاتھوں میں چھلکتا ہوا زمزم کا پیالہ ہو, گلاس ہو. اور پھر اس کے بعد اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جس زمزم سے آپ نے پیارے آقا کے دل کو دھویا تھا کہ اللہ وہی زمزم میں پی رہا ہوں, آپ اسی زمزم سے میرے دل کو پاک فرما دیں. اے اللہ آج جس ہاتھ سے میں نے زمزم کو پکڑا ہے, اے اللہ آج کے بعد اس ہاتھ سے میں کسی ناجائز چیز کو نہ پکڑوں, اس زبان پر میں نے زمزم کو رکھا ہے, اس زبان کا کوئی ناجائز اور حرام ذکر میری زبان پہ نہ جائے. اور اسی طرح سے کعبے کو دیکھ دیکھ کر آپ زمزم کا جام لینا شروع کریں اور دعائیں کرتے رہیں جو دعا لکھی ہوئی ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. یہ دعا اور بھی کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں, بہت سی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو زمزم کا انداز یہی ہو کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چھلکتا ہوا پیالہ ہو اور نگاہیں محبت کے ساتھ خانہ کعبہ پہ لگی ہوئی ہو اور دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو. پھر آپ زمزم کو پیئے. زمزم کو پی لینے کے بعد اب آپ کو جانا ہے صفا مروہ کی سعی کے لیے. یہ صفا مروہ کی سعی کے لیے جب جانا ہے تو پھر آپ ایک دفعہ ٹھیک حجرِ اسود کے سامنے آ جائیں, ٹھیک ایک دفعہ حجرِ اسود کے سامنے آئیں اور حجرِ اسود کے سامنے آ کر پھر حجرِ اسود کا استلام کریں. یہ استلام اس وقت ہے جبکہ ہمیں صفا کی طرف جانا ہے. اگر صفا کی طرف نہیں جانا ہے تو پھر یہ استلام نہیں ہے. تو اگر صفا مروہ کی طرف ہمیں جانا ہے تو پھر استلام کریں گے. اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ گویا آج کے عمرے میں, آج کے طواف میں ہم نے 9 دفعہ استلام کیا. 9 دفعہ استلام بن جاتے ہیں. آپ وہاں سے ایرو بنا ہوگا, نشان بنا ہوگا, اسی نشان سے آپ صفا کی طرف چڑھیں گے. صفا کی طرف جب پہنچیں گے تو کچھ آگے بڑھنے کے بعد تھوڑا سا اونچائی آتی ہے, تھوڑی سی اونچائی آتی ہے, اس اونچائی پہ چڑھیں, اس جگہ تک پہنچے جس جگہ سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے اور پھر وہاں پر کھڑے ہو کر آپ خود لمبی دعائیں کریں. آدمی سوچتا ہے کتنی دعا کریں, وہاں تو کرا ہی ہے. نہیں بھائی, یہ تو دعا کی جگہ ہی ہے, یہ تو لینے کی جگہ ہی ہے, یہ تو دامن پھیلانے کا مقام ہی ہے. لہٰذا وہاں کھڑے ہو کر خوب دعا کریں, عربی میں اپنی زبان میں جو دعا ہو سکتی ہو دعا کریں. اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھیں. اندازہ ہو جائے گا کہ سعی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے. لہٰذا سعی شروع کریں. صفا سے آپ چلیں گے مروہ کی طرف تو تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد گرین لائٹ آئے گی. گرین لائٹ آئے گی. گرین لائٹ سے آپ کو دوڑتے ہوئے جانا ہے, دوڑتے ہوئے جانا ہے آپ کو. یہ دوڑ مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے نہیں ہے. ایک گرین لائٹ سے دوڑتے ہوئے دوسرے گرین لائٹ پر آپ کو جانا ہے. اب عورتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کنارے سے دوڑیں اور اپنے مستورات سے کہہ دیں کہ آپ اپنی رفتار سے چلیں اور میں آگے دوڑ کر آگے کی گرین لائٹ کے پاس گھما رہوں گا, آپ وہاں میرا ساتھ پکڑ لیں. ताकि औरतों का साथ छूटने ना पाए और भीड़ की वजह से वो परेशान ना हो। लिहाजा औरतों को ये बताना नहायत जरूरी है कि मैं फला किनारे के रास्ते से दौड़ूंगा और आगे जाकर मैं सीमा हो जाऊंगा, अगर अगर आपको मैं ना मिलूं तो आप उसी ग्रीन लाइट के बस खड़े हो जाना, आप आगे मत बढ़ना, आप मेरी तलाश मत करना, मैं खुद तलाश करते करते आप उसी ग्रीन लाइट पर नहीं तलाश करूंगा। यह है औरतों के गुम होने के बचाने का तरीका। तो आप इस तरह से वहां दौड़ करें, ग्रीन लाइट से दूसरी ग्रीन लाइट पर दौड़ के जाएंगे, फिर उसके बाद अपनी रफ्तार से चलते हुए मरवा पहुंचेंगे। मरवा जब आप पहुंच गए तो आपका एक शॉट पूरा हो गया, एक चक्कर पूरा हो गया। फिर मरवा पर आप खड़े होकर ऐसी जगह खड़े हों जहां से काबा सामने पड़ सकता हो, फिर वहां दुआ करें और वहां से दुआ करके फिर अपनी रफ्तार से चलें। अपनी रफ्तार से चलते हुए फिर आप वहां ग्रीन लाइट पहुंचेंगे तो वहां से दौड़ना शुरू करेंगे और दूसरी ग्रीन लाइट पर जाके आपका दौड़ कम होगा, खत्म होगा। फिर वहां से चलते हुए सफा पर जाएंगे, सफा पे जाएंगे, ये आपका दो शॉट हो गया। इस तरह से आपको सात शॉट लगाना है। शुरू किया है सफा से, आपका पूरा होगा मरवा में, पूरा होगा मरवा में। अब मरवा से पूरा होगा तो वहां बहुत बड़ा गेट बना हुआ है, उस गेट से अगर आप बाहर निकलेंगे तो थोड़े फासले पर हजाम की दुकान थी, वहां पर सैलून की दुकान है, वहां भी आप जा सकते हैं या आप लौट कर अपनी बिल्डिंग की तरफ आ सकते हैं। ये जो आपने तवाफ किया और तवाफ के साथ आपने सफा मरवा की सही की, इससे आपका उमरा पूरा हो गया, आपका उमरा पूरा हो गया, अमल पूरा हो गया। तवाफ किया, सफा मरवा की सही की, ये आपका उमरा पूरा हो गया। लेकिन अभी आप एहराम की हालत में हैं। एहराम की हालत में जब तक रहेंगे, चाहे तवाफ हो चुका चाहे सही हो चुकी, लेकिन एहराम की हालत में जब तक रहेंगे तमाम पाबंदियां आप पर बाकी रहेंगी। जिन जिन चीजों से मना किया गया है वो तमाम चीजें आपके लिए अभी भी मना है। एहराम से निकलने का एक ही रास्ता है, या तो आप अपने बाल का हलक करा लें, या अगर बाल आपके बड़े हैं तो कम से कम एक कोरवे के बराबर अपने बाल का कत्र करा लें, कैसी से कटवा लें, तब जाकर आप एहराम से निकलेंगे। एहराम से निकलने का एक ही रास्ता है, या तो बाल का हलक करा लें या फिर आप एक कोरवे के बराबर अपने बाल को कटवा लें। एक कोरवे से कम कटाएंगे तो भी आपका एहराम खत्म नहीं होगा। इससे बेहतर यह है कि इंसान सुरही फिरा ले, हलक करा ले, ताकि किसी तरह का कोई शुभा और शक बाकी न रहे। मर्दों का एहराम से निकलने का तरीका या तो हलक है या कैंची से कोरवे के बराबर बाल का कटाना है। औरतों का मतलब, औरतें भी तवाफ करके सही करके अपने उम्रे से फारिग हो चुकी, मगर अभी भी वो एहराम की हालत में है। एहराम की तमाम दर पाबंदियां उन पर अभी भी हैं, जिस तरह से मर्दों पर उसी तरह से औरतों पर। औरतें अपने एहराम से कैसे निकलेंगी, उनके जो बाल हैं उस बाल की जो चोटी रस्सी की तरह से बना दी जाती है, उस चोटी को पकड़ के जो अमली है उस अमली पर चोटी के किनारे को लपेट दिया जाए, चोटी के किनारे को लपेट दिया जाए। अगर आप लपेटेंगे फिर उसको खोलेंगे तो एक कोरवे से ज्यादा बनेगा, एक कोरवे से ज्यादा बनेगा, लिहाजा उसको काट दिया जाए। तो इस तरह औरतों के बाल चोटी के निचले हिस्से से एक कोरवे के बराबर अगर काट दिया जाए तो फिर औरत अपने एहराम से निकल जाती है। अब ये औरत के बाल काटेगा कौन, या तो उसका महरम काटेगा, या उसके शौहर हैं तो शौहर काटेंगे, बेटे भाई तो वो काटेंगे। नंबर दो, खुद वो अपना बाल काटना चाहे, याद रखिएगा, खुद वो अपना बाल काटना चाहे तो औरत अपना बाल खुद भी काट सकती है। नंबर तीन, एक औरत दूसरे औरत का बाल काटना चाहे तो दूसरी औरत भी उसके बाल काट सकती है, बशर्ते कि जो दूसरी औरत कैंची चला रही है उसका उमरा हो चुका हो, उसने तवाफ और उसने सही कर लिया हो। चाहे उसके बाल अभी कटे हुए नहीं है, चाहे दूसरी औरत के बाल अभी कटे नहीं है, मगर उसने उमरा किया हुआ और वो अगर दूसरी औरत के बाल काटे तो काट सकती है। अगर किसी औरत जिसने अभी अपना उमरा नहीं किया और एक औरत उमरा करके आ गई, अब उसने दूसरी औरत से कहा जिसका उमरा अभी बाकी है कि चल तू जरा मेरे बाल को काट दे, तो उस पर कमला सुना जाए। इस बुनियाद पर वही औरत किसी दूसरे औरत के बाल काट सकती है कि जिस औरत का उमरा हो चुका हो, अगरचे उसने अभी अपने बाल न काटे। सबसे बेहतर तरीका औरतों के लिए कि अपने महरम तो होते ही है, अपने महरम के जरिए बाल कटा ले, या खुद एहतियात के साथ इस तरह से बाल काटे कि एक कोरवे के बराबर उसका बाल कट जाए। जब इस तरह बाल कट गए, एहराम से निकल गए, जब एहराम से निकल गए सारी पाबंदियां खत्म हो गई अब आप कॉमन ड्रेस में आ गए, अब सारी चीजें आपके लिए जो मना हो गई थी वो तमाम चीजों की इजाजत हो गई, हलाल जायज हो गई। अब उसके बाद अब आपको मक्का मुकर्रमा में इहराम के बगैर आपको रहना है और हज का इंतजार करना है। ये हज से पहले